बहरहाल आगे चलते हैं। अगला रुकू आयत 267 से 273। बहुत प्यारी आयत भी है, मफहूम भी है। खामोश तकसीमे कार, दीन की खिदमत के सिलसिले में क्या है? आयतें पढ़ेंगे तो फिर समझ आएगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन्फिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम वमिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्दी। इसमें आपको ईमान वाली पुकार भी मिल गई अपने रब से, और अल्लाह ने आपको मुझे बता दिया कि मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत है, बार बार तुम्हें पुकारता हूँ। आप देखिए, जिस बच्चे से प्यार होता है ना, हमेशा उसके ही नाम मुंह पे आता है। फिर कुछ बच्चे चिढ़ते भी हैं, मामा आप मुझे ही क्यों कहती हैं बार बार, पानी लाओ, ये दो वो दो। तो उसको आज से बताएगा कि इसलिए बेटा, ये जिससे प्यार होता है ना, तो उसका नाम जुबान पे रहता है। ठीक है, तो इसमें आइए तर्जमे को देखते हैं। ऐ ईमान वालो, अपनी पाकीजा कमाई में से और जमीन में से तुम्हारे लिए हमारी निकाली हुई चीजों में से खर्च करो। इनमें से बुरी चीजों के खर्च करने का कसद ना करो जिसे तुम खुद लेने वाले नहीं हो। हाँ, अगर आंखें बंद कर लो और जान लो कि अल्लाह ताला बेपरवाह और खूबियों वाला है। शैतान तुम्हें फकीरी से धमकाता है और बेहयाई का हुक्म देता है, और अल्लाह ताला तुमसे अपनी बख्शिश और फजल का वादा करता है। अल्लाह ताला वुसअत वाला और इल्म वाला है। वो जिसे चाहे हिकमत और दानाई देता है, और जो शख्स हिकमत और समझ दिया जाए वो बहुत सारी भलाई दिया गया, और नसीहत तो सिर्फ अक्लमंद लोग ही हासिल करते हैं। तुम जितना कुछ खर्च करो यानी खैरात और जो कुछ नजर मानो, इसे अल्लाह ताला खूब जानता है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। अगर तुम सदके खैरात को जाहिर करो तो वो भी अच्छा है, और अगर तुम इसे पोशीदा पोशीदा यानी छुपा छुपा के, हिडनली सीक्रेटली मिस्कीनों को दे दो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा, और अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम आमाल की खबर रखने वाला है। इन्हें हिदायत पर ला खड़ा करना आपके जिम्मे नहीं, बल्कि हिदायत अल्लाह ताला देता है जिसे चाहता है, और तुम जो भली चीज अल्लाह की राह में दोगे इसका फायदा खुद पाओगे। इसको हाईलाइट कीजिएगा। तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रजामंदी की तलब के लिए ही खर्च करना चाहिए। जो कुछ भी माल तुम खर्च करोगे इसका पूरा पूरा बदला तुम्हें दिया जाएगा, और तुम्हारा हक ना मारा जाएगा। सदकात के मुस्तहिक सिर्फ वो गुरबा हैं जो अल्लाह की राह में रोक दिए गए, जो मुल्क में चल फिर नहीं सकते। क्या हैंडीकैप है? नहीं, अपने काम में बंधे हुए हैं। दीन के कामों ने, दीन की खिदमत ने, लोगों को दीन देने ने उनको इतना मसरूफ कर दिया है कि वो पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम दीन के खादिम है, यानी खादमीन हरमैन शरीफैन का नाम आपने सुना होगा ना, तो इस आयत के साथ आप लिख लें खादमीन दीन। क्या करते हैं? चल फिर नहीं सकते यानी बंधे हुए, कैसे जाएं? एक बंदा है जिसको फुल टाइम काम करना है, तो उसके लिए ये क्या बात हुई? मैं कितनी दफा कुरान पढ़ चुकी थी, यानी मैं एक सिर्फ आपको अपनी जहालत तो नहीं कहूंगी, लेकिन हमारे कुरान पढ़ने पढ़ाने के तरीके पे बात करूंगी। मैं इस आयत के अंदर समझती थी ये हैंडीकैप लोगों के लिए, क्योंकि मफहूम तो यही दिख रहा है ना कि जो मुल्क में चल फिर नहीं सकते यानी स्टक रहे कहीं है, लेकिन जब पढ़ा तो फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिल खोल दिए। कैसे? देखिएगा, नादान लोग इनकी बेसवाली की वजह से इन्हें मालदार ख्याल करते हैं। आप इनके चेहरे देखकर क्याफे यानी निशानियों से इन्हें पहचान लेंगे। वो लोगों से चिमट कर सवाल नहीं करते। तुम जो भी माल खर्च करते हो अल्लाह ताला इसको जानने वाला है, यानी दूसरों को बताने की क्या जरूरत है। तो पहली बात तो देखिए कि इसमें ईमान से मुतल्लिक आयत आ गई 267। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन्फिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम। क्या पैगाम है इसका? अल्लाह ताला पाक है, पाक चीज ही कबूल फरमाता है। दूसरी बात, शैतान के धोखे फकर और तंग दस्ती के हैं। जब माल खर्च करने लगते हैं तो रोकता है, और जब पैसा जमा हो जाए तो उसको फोहश चीजों पे लगवाता है। अब किस लिए होता है? चलो कोई बात नहीं, पैसे ही है ना, बच्चों की शादी है और फन है और दिस एंड दैट है। तो शैतान के वादे झूठे, जबकि अल्लाह का वादा, अल्लाह की मगफरत उसकी रहमत का है। फिर अल्लाह के रास्ते में बेहतरीन माल खर्च करना है, अल्लाह से सही वक्त पर सही काम करने की हिकमत मांगनी है, और फक्र व फाका के खौफ से सदका नहीं रोकना। अब ये तो वो बातें हुई जिसको हमने समझा, लेकिन जो इस रुकू का टॉपिक था उसको जरा सा अगर हजम करना चाहें तो तकसीमे कार, इससे क्या मुराद है? याद रखिए कि अल्लाह ने दुनिया में इंसानों से मुख्तलिफ काम लेने हैं। हर काम अकेला बंदा खुद नहीं कर सकता, और ना कर सकता और ना करना चाहिए। इसमें एक असूल लिख लीजिए कि जो काम दूसरे कर सकते हैं वो मुझे नहीं करना। लिखें, दोबारा बोलूं, जो काम दूसरे कर सकते हैं वो मैंने नहीं करना, और दूसरे इसका ऑपोजिट लिखिए, जो काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ फिर वो मैंने छोड़ना नहीं है। हजरत यूसुफ की मिसाल ले लीजिए, खुद पेश कर दिया था कि मैं हफीज भी और अमीन भी हूँ। अब इसमें जो तकसीमे कार है इसको समझ लीजिए आप, देखिए कि अल्लाह के रस्ते में खर्च करने की मदाद है ना कि कहाँ खर्च करो कहाँ नहीं करो। यहाँ जिन लोगों का जिक्र है वो कौन है, दीनी खादमीन, उनकी माली मदद की जाए जो दीन की जिद्दोजहद में अपने आप को तन मन धन से लगा चुके। अब किसी मर्द को लीजिए, मैं तो चूंकि एक औरत हूं और आप भी औरतें हैं ना, तो हम अपने ऊपर ना लें इसको, क्योंकि औरतों को क्या लेना देना पैसे धेले से। अल्लाह मर्दों को सलामत रखे, अल्लाह पहले माँ बाप और भाइयों को रखे और फिर शौहर और शौहरों के बाद बच्चे। औरत के सर के ऊपर तो अल्लाह ने कोई जिम्मेदारी डाली नहीं, ये तो आज की दुनिया ने आपको एक औरतों के हकूक पामाल किए ना। ये आगे सूरत निसा में थोड़ी बातें आ जाएंगी इक्वेलिटी पे। आप समझिए एक मर्द है, वो पूरा वक्त सोच रहा है दीन के साथ है। आप सोचिए कि जिस तरह एक कामयाब ताजिर, उसके पास किसी दूसरी चीज के लिए वक्त नहीं रहता, क्योंकि ताजिर या बिजनेसमैन या जो भी ट्रेडर है वो हर वक्त अपने काम के, अपने तजारत, अपने काम को बेहतर करने के लिए सोचता रहता है। बिल्कुल यही मामला दीन की खिदमत का है। जो शख्स फोकस होके यकसुई के साथ अपने आप को दीन की खिदमत में लगाए, उसके पास मुआशी जिद्दोजहद के लिए वक्त नहीं रहेगा। ऐसे ही है ना, मस्जिद में एक इमाम साहब है, अगर उन्होंने 5 वक्त नमाज भी पढ़ानी है, बीच में उन्होंने कुछ दुरूस का अहतमाम करना है, बीच में कुछ सोशल वर्क के प्रोजेक्ट्स हैं, खिदमत करनी है, होमलेस लोगों के लिए कुछ करना है, तो उनके पास वक्त तो नहीं रहेगा। ऐसे ही है ना, तो अब जब वो बंदा कुछ वक्त ये काम करे अल्हम्दुलिल्लाह और कुछ वक्त कमाएगा, तभी तो बच्चों को रोजी रोटी देगा। हुआ क्या कि बंदे का जहन नहीं चलता। यानी ये वो आयत है जिस पे मैं ये पूरे दिल के साथ कह सकती हूँ कि दीन की खिदमत के दो तरीके, एक पार्ट टाइम एक फुल टाइम। पार्ट टाइम वालों को आप अंसारुल्लाह कह दीजिए, मेरा भी टाइम रखिए, मुझे भी दीजिएगा ना, कुछ मेरे पे भी तो जिम्मेदारी डालिए ना, कुछ मेरा भी हिस्सा डल जाए। वो सिर्फ पार्ट टाइम रहेंगे। वो कौन है, जब सूट किया कर दिया, आज मेरा नाम लिख लें, इस वक्त लिख दें, नहीं नहीं कल नहीं वो नहीं, ये सारी जिंदगी एक लेवल से ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन एक दूसरा दर्जा जिसकी यहां बात की गई है, वो कहते हैं कि बीच में सिर्फ अपनी जाती जरूरत के लिए जो वक्त है ना, मेरा सोना, नमाज, खाना, इसके बाद जहां मर्जी मुझे लिख ले अल्लाह, ये उनकी बात है। किसी भी काम को आप करते ही तब अच्छी तरह जब फोकस होते हैं। मैं अपनी गवाही दे सकती हूँ, मैं इधर पारा पढ़ा ही नहीं सकती आपको। आप यकीन करें, आने तक मुझे ऐसा लगता है मुझे बुखार हो रहा है। वो चीजें जो पिछले कई माह से चल रही होती हैं, मैं खयानत नहीं करती और गलती करती होंगी शायद, कि आने से 2 मिनट पहले भी मुझे उन आयतों में से कोई बात समझ आए तो मैं फौरन मैसेज में कहती हूँ कि आप स्लाइड्स में लिख दें। बहुत सारी लिख भी नहीं सकती, कई चीजें यहाँ बैठ के समझ आती हैं। ये कब होगा, जब मैं फोकस्ड हूँ। तो जब आप दीन के काम को फोकस दर्जे पे करेंगे फिर आप जिम्मेदार बनेंगे। मैं ये जिम्मेदारी ले रही हूँ कि मैं आपको यहाँ बैठ के पढ़ाऊंगी, लेकिन क्या मैं आपकी कुर्सियां भी लगाती हूँ? नहीं। क्या मैंने माइक सिस्टम सेट किया? नहीं। अल्लाह ने मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ काम लेने हैं। सूरत बनी इसराइल में हम पढ़ेंगे शाकिला है, जैसे हमारी शक्लें फर्क है ना, इस तरह हमारी शाकिला यानी हमारा इनर भी फर्क है। तो जिस बंदे को तिजारत करनी है वो पूरा उसमें फोकस्ड है, जिसको दीन की खिदमत करनी है पूरी है। आप बताइए कि दीन की खिदमत करने वाला, उसके मसाइल कौन हल करेगा फिर? अल्लाह ने माल वालों से कहना है तुम माल लगाओ, इल्म वालों से कहना है तुम इल्म लगाओ, गाड़ी वालों से पूछना है गाड़ी किधर है तुम्हारी, और जिनके पास कोई टेक्निकल स्किल थी उनको लगा दिया। यानी ये एक खामोश तकसीमे कार है, और वो क्या है, मुख्तलिफ लोग अल्लाह की रजा के लिए अपने आप को फोकस कर देते हैं उन चीजों पे जो उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता फिलहाल, और फिर उसके बाद उनकी खिदमत उन लोगों को करनी होती है जो ये कर नहीं सकते, लेकिन वो कहते हैं कि हम दूसरा करते हैं। तो बहरहाल ये आते हैं सहाबाए कराम में से उन लोगों के लिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल पास फुल टाइम स्टूडेंट्स थे। अबू हुरैरा, किस्सा आपने कई बार उनका सुना होगा, कि भूख की वजह से बेहोश हो जाते थे, लोग कहते थे इनको मिर्गी का दौरा पड़ गया, लेकिन वो कहते हैं मेरे में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं ये कह सकूं कि लोगों मैं बीमार नहीं हूं, मैं भूखा हूं। यहां अल्लाह ने कहा तुम उनके चेहरों से उनको पहचानो। तो अल्लाह करे कि आज उम्मत मुस्लिमा जिस शौक और जौक से फोकस होके माल कमा रही है, अपने बच्चों की शादियां कर रही है, अपने घरों को देखती है, इसी फोकस से दीन की खिदमत भी करे। बहुत पैसा। अपनी जिंदगी आज की उम्र को लिखिए, किस उम्र पे हैं, आगे कितना और पीछे कितना। ये तो मानते हैं ना कि आगे कम है पीछे से, अगर एवरेज पे भी चले तो। सफर शुरू होता है ना कि 200 किलोमीटर है, तो जब आप 150 कर लेते हैं तो आपको लग रहा होता है कि हम मंजिल के करीब हैं। जो 30+ हैं, जो 40+ हैं, वो मंजिल के करीब है, और जो 60+ हैं उनका तो आया खड़ा स्टेशन। हम तो पहले ही बस्ते बांध के खड़े हो जाते हैं जहाज के उतरने से भी पहले। ट्रेन में भी हम लोग गिरते पड़ते कहते नहीं मेरे सामान कर दो, तो बस्ते बुस्ते बांध कर अपने आप को अल्लाह के सामने पेश करने के लिए इन चीजों को सुनने की जरूरत है। अगला रुकू देखते हैं, जो अब वो सिनेरियो है, अभी तक देखा है गुड बेस्ट सिनेरियो के खपा दो लगा दो, जान वाले जान लगाएं, माल वाले माल लगाएं, घर वाले अपने घर पेश करें, गाड़ियों वाले गाड़ियां लगाएं, बच्चों वाले बच्चों को देखें, और सारे मिलकर इस दीन के पौधे पे बहार की कोशिशें करो। ये दो चार लोगों का काम नहीं है। अब इसकी वर्स्ट सूरत दिखेगी आपको, 274 से 281, टॉपिक लिखिए सूद की तबाहकारियां। الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية, जो लोग अपने मालों को दिन रात खुले छुपे खर्च करते हैं, इनके लिए रब्बे ताला के पास अजर है, और इन्हें कोई ना खौफ होगा और ना वो गमजदा होंगे, सूदखोर लोग खड़े ना होंगे। देखिए इन आयतों का सिर्फ तर्जमा सुनिए, इस वक्त कुरान में तकरीबन 4 मुकामात पे सूद का जिक्र आना है, आज फर्स्ट टाइम आ रहा है, और अल्लाह की बांट है। हम क्या कह सकते हैं इसमें, क्या हिकमतें हैं, ये तो आप कभी बाद में सुने, कि ये आयतें जो इधर नाजिल हो रही हैं हमें सबसे पहले मिल रही हैं, लेकिन तरतीब नजूल में फर्क थी, जहन साजी थी। लेकिन आज जिस तरह इंसानियत, मैं मुसलमान के लफ्ज नहीं बोल रही, जिस तरह इंसानियत का एक एक कह लीजिए कि फर्द सूद में जकड़ा पड़ा, उनको सिर्फ इसका तर्जमा सुनना है और इसके साथ अपने आप का मुहासबा करना है। सुनिएगा, कब्र से निकलने का मंजर है, सबने निकलना है, और उस वक्त सूद वालों का क्या मामला है। सूद खोर लोग ना खड़े होंगे, मगर इस तरह जिस तरह वो खड़ा होता है, जिसे शैतान छू कर खत्ती बना दे। ये इसलिए कि ये कहा करते थे कि तिजारत भी तो सूद ही की तरह है, हालांकि अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल किया और सूद को हराम किया। जो शख्स अपने पास आई हुई अल्लाह की नसीहत सुनकर रुक गया, इसके लिए वो है जो गुजरा, और इसका मामला अल्लाह ताला की तरफ है, और फिर जो दोबारा हराम की तरफ लौटा वो जहन्नमी है, ऐसे लोग हमेशा ही इसमें रहेंगे। लोग कहते कहाँ लिखे हराम, कहाँ है जहन्नमी। ये देखिए शराब के ऊपर बहुत से सवाल लोगों के उठते हैं ना, हराम का लफ्ज नहीं है, ये नहीं, सूद पे हराम का लफ्ज भी है, जहन्नमी का लफ्ज भी है, इसके मिटने की भी बातें हैं, 40 से ज्यादा हदीसें हैं सूद के बारे में। तो लोग अब उनका इनकार नहीं कर सकते ना, तो फिर पता क्या कहते हैं, नहीं, ये सूद नहीं है, ये तो कुछ और है, वो तो सूद और था तो क्या था। तो ये ख़शें बोलती हैं बंदे की, हालांकि अल्लाह का फैसला क्या है, अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदके को बढ़ाता है। अल्लाह ताला किसी नाशुक्रे और गुनाहगार को दोस्त नहीं रखता। बेशक जो लोग ईमान के साथ सुन्नत के मुताबिक नेक काम करते हैं, नमाजों को कायम रखते हैं और जकात अदा करते हैं, इनके अजर इनके रब्बे ताला के पास हैं, इन पर ना तो कोई खौफ होगा और ना उदासी और ना गम होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा एक पुकार सुनिए ईमान की, आई विश के आपको सिर्फ आयत सुनकर ही तर्जमा इसका समझ आ जाए। या अय्युहल्लज़ीना मनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बकिया मिनर रिबा इन कुंतुम मोमिनीन। जरा सुनना चाहते हैं, अब दिल के कान खोलिए, स्कार्फ थोड़े से ढीले करें। ए ईमान वालियो, आप तो मेरे साथ वही है ना, आप सही आयत पढ़ते हैं। ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो, और जो सूद बाकी रह गया है वो छोड़ दो, अगर तुम सचमुच ईमान वाले हो, और अगर ऐसा नहीं करते तो अल्लाह ताला से और उसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये है ईमान वालों को पुकार। देखिए हमेशा ही माँ जो पुकारती है वो टॉफी देने के लिए नहीं पुकारती, कभी उसके नाखून भी काटती है, कभी उसके बाल भी काटती है, कभी उसका मुंह भी धुलाती है। अल्लाह को हक है कि वो हमें बड़े से बड़ा हुक्म, जो हमें अच्छा लगे ना लगे, वो दे दे। अंदाज तो देखिए, पूरी शरीयत में कोई अमल इसके सिवा नहीं है जहां अल्लाह ने ये कहा कि फाजनू बिहरब मिनल्लाहि व रसूली। उलमाए कराम का मुत्तफिका ये फैसला है कि कुरान में सबसे ज्यादा वईद, वईद जिसको ड्रावा कह लें, थ्रेटनिंग कह लें, वो सूद की आयत पे है। शिर्क तक पे भी नहीं है ये बात, क्या किफाज नबी हर बे मिन अल्लाह व रसूली ही, अल्लाह रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ अगर तौबा कर लो तो तुम्हारा असल माल तुम्हारा ही है, ना तुम जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाए। और अगर कोई तंगी वाला हो तो इसे आसानी तक मोहलत देनी चाहिए, और सदका करो तो तुम्हारे ही लिए बेहतर है अगर तुम्हें इल्म है, और उस दिन को डर जाओ। वत्तकु यौमन, ये है वो आयत जो के आखिरी आयत के लिए, वत्तकु यौमन, और उस दिन से डर जाओ जिसमें तुम सब अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, और हर शख्स को उसके आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, और उन पर कोई जुल्म ना किया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। कोई दिल के अंदर इर्तियाश हुआ है, अगर कोई हरकत हुई है, तो दुआ मांग लीजिए अभी फिलहाल कि अल्लाह मैं तो इस बात को सुन रही हूँ, मेरे घर वालों के साथ मिलकर मुझे बेहतरीन तरीके से कोई बेहतरीन फैसले करने की तौफीक अता फरमा। आप देखिए कि एक और आयत है इसमें ईमान के टॉपिक के साथ अल्लाह ने जो आपको दिया 277, इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति वअक़ामुस्सलाह से लेकर वलाहुम यहसनून, इसका टॉपिक क्या है? इंसान के दर्जे दुनिया में नहीं अल्लाह के पास बुलंद होते हैं। हम दुनियावी स्टेटस के लिए ये कुछ करते हैं ना, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, फोन है किसी का, नाम आपने अपने लगाया हुआ है क्योंकि आपने तभी उसकी पेमेंट ही नहीं की, आपका तो नहीं है वो, क्योंकि आपने सिर्फ दुनिया को दिखाने या दुनिया में अपने आप को बड़ा करने के लिए किया है। अल्लाह कहता है कि दर्जों की फिक्र करो तो वहां की करो। फिर 278, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बकिय मिनर रिबा, इसका जाकर किसी भी अरबी जानने वाले उस्ताद से तर्जुमा करा ले, जिसका मुसलमान होना भी शर्त नहीं है। लफ्ज मौलवी से चिड़ा है ना, बड़ी सख्ती करते हैं इससे चिड़ा है ना। आप सिर्फ इस आयत के इतने से टुकड़े को जाकर किसी क्रिश्चियन, ज्यू, हिंदू, कोई भी मजहब रखने वाला मुराद है, उससे जाकर के जरा अरबी ग्रामर आती, कहते मैं तो अरबी का टीचर हूँ फलान यूनिवर्सिटी में, जरा मुझे इसका तर्जुमा बता दो। देखिएगा आपको इफ्स एंड बिट्स से पाक की आयत बताएगी कि अल्लाह का पैगाम क्या है, कि तकवा के बगैर जिंदगी बेबंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, आज की इज्जत कल की बेइज्जती का जरिया ना बन जाए। फिर इसके बाद हमें इससे जो अपने लिए अमल लेना है, दुआ शुरू कर दीजिए, कोशिश और दुआ। तो क्या फेथ इन एक्शन है इस पूरे रुकू में से, कि सवाल ना करने वाले सफेद पोश लोगों को भी ढूंढिए और उन पे खर्च कीजिए, सूद को अपनी जिंदगी से निकालना, कभी छुपा कर कभी दिखा कर दोनों तरीकों से खर्च करना है, और अल्लाह हमारे लिए आसान कर दे। आगे है जी 282 से 283, सबसे लंबी आयत कुरान की, आयते दैन इसका टॉपिक है। इस रुकू को देखते हैं पहले, और आपको रब ने पुकारा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के इज़ा तदायन्तुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मा, क्या पता चला कोई कुरान पाक में सबसे तवील आयत तौहीद के बारे में नहीं है, शिर्क के बारे में नहीं है, वालदैन के हकूक पे नहीं है जो कि पूरे दीन की जड़ें हैं, सबसे तवील आयत इंसानी मामलात के लेन देन, बहन भाइयों में कर्जे दे रहे हो लिख लो कब वापस करना है ये लिख लो। होता क्या कि जब हमारा कोई प्यारा मजबूर होता है उस वक्त जज्बात से हम मगलूब होते हैं, हम कहते हैं किसी भी तरह इसकी मदद कर दो, ना लिखते हैं ना गवाह बनाते हैं, बाद में जब तकाजा करते हैं तो उस फीलिंग्स बदल जाती हैं, पहले वो बेचारा बेचारा लगता था, अब आपको लगता है क्या बात है देख ही नहीं रहे। अल्लाह ने ये सारी कमियों बेशियों से बचने के लिए क्या कहा, आइए सुनते हैं। ऐ ईमान वालो, जब तुम आपस में एक दूसरे से मियाद मुकर्रर पर कर्ज का मामला करो तो इसे लिख लिया करो, और लिखने वाले को चाहिए कि तुम्हारा आपस का मामला अदल से लिखे, और कातिब को चाहिए कि लिखने से इनकार न करे जैसे अल्लाह ने उसे सिखाया, बस इसे भी लिख लेना चाहिए, और जिसके जिम्मे हक हो वो लिखवाए, और अपने अल्लाह ताला से डरे जो इसका रब है और हक में से कुछ घटाए नहीं। हाँ जिस शख्स के जिम्मे हक है वो अगर नादान हो या कमजोर हो या लिखवाने की ताकत न रखता हो तो इसका वली अदल के साथ लिखवाए, और अपने में से दो मर्द गवाह रख लो, अगर दो मर्द ना हो तो एक मर्द और दो औरतें जिन्हें तुम गवाहों में से पसंद कर लो, ताकि एक की भूख चूक को दूसरी याद दिला दे, और गवाहों को चाहिए कि वो जब बुलाए जाएं तो इनकार ना करें, और कर्ज को जिसकी मुद्दत मुकर्रर है ख्वाह छोटा हो या बड़ा लिखने में काहली ना करो, अल्लाह ताला के नज़दीक ये बात बहुत इंसाफ वाली है और गवाही को भी दुरुस्त रखने वाली है और शक को शुबे से भी ज्यादा बचाने वाली है। हाँ, ये और बात है कि वो मामला नकद तिजारत की शक्ल में हो जो आपस में तुम लेन देन कर रहे हो, तो तुम पर इसके ना लिखने में कोई गुनाह नहीं है। खरीदो फरोख्त के वक्त भी गवाह मुकर्रर कर लिया करो, और याद रखो कि ना लिखने वाले को नुकसान पहुंचाया जाए ना गवाह को, और अगर तुम ये करो तो तुम्हारी खुली नाफरमानी है। अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह ताला तुम्हें तालीम दे रहा है और अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानने वाला है। और अगर तुम सफर में हो और लिखने वाला ना पाओ तो रहन कब्जे में रख लिया करो, प्लजिंग की बात है इधर। हाँ, अगर आपस में एक दूसरे से मुतमईन हो तो जिसे अमानत दी गई है वो इसे अदा करे, और अल्लाह ताला से डरता रहे जो इसका रब है, और गवाही को ना छुपाओ, और जो इसे छुपा ले वो गुनाहगार दिल वाला है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला इसे खूब जानता है। अल्लाह अकबर कबीरा। देखिए इस रुकू में ईमान से मुतल्लिक आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैन, क्या पैगाम है इस आयत का? माली मामलात को अदल और इंसाफ के साथ लिखना चाहिए, और चाहे छोटी चीज हो या बड़ी हो लिखना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखिए कि सूद, फिर कर्ज और इसी तरह की आयतें दैन पे आ गई। ये पूरी तरतीब है। शुरू में बात हुई कि इन्फाक फी सबीलिल्लाह करो, और साथ ही बात हो गई कि सूद बिल्कुल नहीं करना। बीच में आ गया उधार का मामला कि अब कोई सूद ले नहीं सकता, पैसे हैं नहीं, क्या करे? कहा कर्ज दे दो, और कर्ज दे दोगे तो फिर वो अदा ना करे तो जरा सा ढीला रहा करो। कर्ज देने लेने के अंदर लिखत पढ़त जरूरी है। पता क्या चला कि सूद एक छूत है, और छूत किसको कहते हैं? कंटेजियस। ये जुमला लिखे मेरा, अभी तो आप इस पे सिर्फ गौर करेंगे, फिर बाद में देखेंगे। एक दफा आप दरवाजा खोल दें सूद पे कोई चीज लेने का, फिर छूत की तरह आप दूसरा भी लेंगे। पहले घर लेंगे, फिर सजाने के लिए फर्नीचर लेंगे, फिर गाड़ी लेंगे, फिर गाड़ी का पेट्रोल लेंगे, फोन तक हमारा ऐसी चीजों के से गुजर के जाता है कि ये कंटेजियसली आता है। और एक दफा दरवाजा बंद कर दीजिए। कुरान ने तिजारत और सूद का फर्क आपके मेरे सामने रखा, जरा सा इसको गो थ्रू कर लीजिए। क्यों? ये हर दौर में रहा, ये आज की बात नहीं है कि भाई सूद भी तो ऐसे ही होता है जैसे तिजारत, उसमें भी नफा है इसमें भी नफा है। हालांकि इसके बरक्स तिजारत की कमाई हलाल है, सूद की कमाई हराम है। तिजारत की कमाई में बरकत है, सूद में बजाहर नफा है मगर बरकत नहीं है। सच्चा और अमानतदार ताजिर क्यामत के दिन अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा, जबकि सूदखोर अल्लाह ताला और रसूल से हालते जंग में है। तो आप बताइए कि उसको खैर कहाँ से मिलने वाली है? कुरान की तवील तरीन आयत कर्ज लेने और देने के अहकाम से मुतल्लिक है। इससे पता चलता है कि कर्ज लेना जायज है। कर्ज देना बहुत बड़ी नेकी है। आप जितना कर्ज देते हैं हर दिन उतनी रकम सदका करने का जर है। उस मुद्दत तक जहां तक लिखा था, आप लिखी हुई मुद्दत आ गई और वो दे नहीं पा रहा तो आप कहते हैं अच्छा कुछ और दिन ले लो, उसके बाद हर दिन दुगना अजर है। ये तो इतनी बड़ी नेकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह नूरुल कुरान इस प्रोजेक्ट पे काम करता है पूरी दुनिया में, क्योंकि इबादत करके खुद को नेक समझ लेना काफी नहीं होता। माली मामलात में भी खालिके कायनात की हिदायत के मुताबिक अमल करना पड़ेगा। और अब इसके बाद जी अर्श के खजाने समेटिए, सूरत बकरा पूरी होती है, रुकू नंबर 40 है, 284 से 286 पे। अब बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स करिए, ये दुआओं का वक्त है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरत के आखिर में एक बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज, आसमानों और जमीन की हर चीज अल्लाह ही की मलकियत है। तुम्हारे दिलों में जो कुछ है तुम इसे जाहिर करो या छुपाओ। युहासिबकुम बिहिल्ला, अल्लाह तुमसे इसका हिसाब लेगा, फिर जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे सजा दे, और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। आमन अर्रसूलु बिमा उन्जिला इलैही, रसूल ईमान लाया उस चीज पर जो उसकी तरफ अल्लाह ताला की जानिब से उतरी, और मोमिन भी ईमान लाए। ये सब अल्लाह ताला और इसके फरिश्तों पर और इसकी किताबों पर और इसके रसूलों पर ईमान लाए। इसके रसूलों में से किसी में हम तफरीक नहीं करते, उन्होंने कह दिया कि हमने सुना और इताअत की। नोट किया आपने? बनी इसराइल के लोगों का पैगाम था, पहले पारे में था, समेना वा सईना, पहले पारे का जो आखिरी वन रूप है ना उसके करीब है ये आयत। समेना वा सईना, वी लिसन बट वी डोंट ओबे। ईमान वालों का क्या? समेना वा ताना, अल्लाह आज मुझे आपको भी सुनकर मानने वालों में कर दे, और कहें कि अल्लाह जो सुन रहे हैं इस पे अमल करेंगे इंशाल्लाह। समेना व अतवाना हमने सुना और इताअत की, हम तेरी बख्शिश तलब करते हैं और ऐ हमारे रब हमें तेरी ही तरफ लौटना है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी जान को इसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता, जो नेकी वो करे वो उसके लिए है और वो जो बुराई वो करे वो उस पर है। रब्बना ला तुआखिसना, ए हमारे रब अगर हम भूल गए या खता की हो तो हमें न पकड़ना। चुपके से दुआएं मांगिए। ए हमारे रब हम पर वो बोझ ना डाल जो हमसे पहले लोगों पर डाला था। ए हमारे रब हम पर वो बोझ ना डाल जिसकी हमें ताकत नहीं, और हमसे दरगुजर फरमा, हमें बख्श दे और हम पर रहम कर, तू ही हमारा मालिक है, और हमें काफिरों की कौम पर गलबा अता फरमा। क्या खूबसूरत आयत ये है जी। फंसुरना लिल कौमिल काफिरीन, क्या पता चला। आमन रसूल से लेके आखिर तक देखें, आयत 285 का पैगाम क्या है कि जो मुआफियां मांग लेते हैं अल्लाह इनको मुआफ कर देता है, और जो छोटे बन जाते हैं अल्लाह उनको बड़ा बना देता है। ये आखिरी दो आयतें अर्श के खजाने में से हैं, मेराज के मौके पे नाजिल हुई। पूरा कुरान जमीन पे और ये आसमान पे नाजिल हुई। पूरी शरीयत जमीन पे उतरी और नमाज जाकर आसमानों पे दी। इसीलिए तो कहा कि नमाज मोमिन की मेराज है और रात को पढ़ने वाले के लिए ये किफायत करती है। क्या खूबसूरत पैगाम पे सूरत बकरा पूरी होती है। जरा से इस पे गौर कीजिए, सूरत बकरा पूरी हुई। कुरान पाक की तवील तरीन सूरत हमें क्या कह के जाती है? तकवा इख्तियार करो। सूरतों के शुरू और आखिर में रब्त होता है, इसको फवातीख और उसके आखिर की चीजों के साथ भी जोड़ते हैं। सूरत बकरा के शुरू में तकवा की बात थी, हुदा लिल मुत्तकीन, फिर अल्लाजीना से लेके आगे की जो बात चलती गई हमें आपको पैगाम दिया। आपको पता है कि सूरत बकरा का एक नाम सूरत तकवा भी है। इस सूरत के अंदर हमें जो पैगाम दिया गया वो क्या है कि अगर नस्रु मिन अल्लाह ही व फतहुन करीब का वादा पूरा कराना है उम्मत को तो तकवा इख्तियार करना पड़ेगा। आज भी अल्लाह मदद करने को तैयार है, शर्त एक है कि तुम उसको लेने को तैयार हो के नहीं। आज आपकी मेरी जिंदगी में तकवा आता जाए। आपने इस पूरी सूरत में तकरीबन 25 to 26 अलामतें मुत्तकियों की पढ़ी हैं और तकरीबन 25 to 26 टाइम इसमें तकवा का तस्करा हुआ है। इस पारे के साथ इसको जोड़ लीजिए तो लिखिए अंबिया कराम के मिशन को पूरा करने के लिए सबसे अहम चीज तकवा लेकर आओ। आंखों की, कानों की, जुबान की, दिल की हिफाजत करो। सूरत का शुरू हुदा लिल मुत्तकीन से हुआ और इख्तिताम हुआ गलबे की दुआओं पे। फन सुरना लिल कौमिल काफिरीन। रब्बना ला तुआखिसना इन नसीना। मैं अक्सर सोचती हूँ कि आज हम आसानियों में अमल नहीं कर रहे, दीन पे मुश्किल पड़ गई तो क्या करेंगे। आप देखिए कि जिसने दुआ की ना उसने दरवाजा खटखटाया, और जो दरवाजा खटखटाता है तो दरवाजा आखिर खुल ही जाता है। कभी इस्लाम के गलबे की दुआओं से पीछे ना हो, रो के मांगे। आपकी नमाजों में, आपकी दुआओं में हर वक्त इस्लाम के दर्द होना चाहिए। हजरत उमर ने 10 साल में सूरह बकरा पढ़ी थी, उन्हीं के बेटे इब्ने उमर ने 8 साल में पढ़ी थी, हमने सिर्फ 3 दिन में पढ़ी। अब ये देखेंगे कि हमारे अंदर तकवा कितना आता है। कुरान पूरा करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसके ऊपर अमल करते जाना और अपने आप को बेहतर से बेहतरीन की तरफ लाना असल मतलब ये है। अपने लिए अच्छी सी दुआ कीजिए, अपने आप को बताइए कि मैंने इसमें इतनी बार रब की पुकार सुनी, क्या मैं इस पे अमल करती हूँ, और अपने लिए दुआ मांगिए।